तारीख 21 जुलाई दिन गुरुवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ अपशब्द पड़ा, बीजेपी नेता को भारी, पार्टी से निकाले गए, लखनऊ में पुलिस केस दर्ज।
हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, उसके विरोध में मेरे और अन्य साथियों के साथ में वो तहरीर दी गई।
उपाध्यक्ष दयाशंकर के बयान का बीजेपी को कितना हो सकता है नुकसान, सुनेंगे एक विश्लेषण। सुनवाएंगे कश्मीरी युवती की डायरी और एक मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के एक मुसलमान और एक सिख समर्थक से।
देखिए, आज तक आईएसएस, तालिबान और अलकायदा ने जितने मुसलमानों को मारा है, उन्होंने किसी को नहीं मारा।
वो उन्होंने एक शेख को नहीं निकाला था, एक प्रोटेस्टर को निकाला था।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती के लिए अपशब्द कहने वाले दयाशंकर सिंह पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर महिला का अपमान करने और SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। बसपा कार्यकर्ता लखनऊ में आज दयाशंकर सिंह के बयान के विरोध में प्रदर्शन भी करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयब अर्दोआन ने पिछले हफ्ते नाकाम तख्तापलट के बाद देश में 3 महीने के आपातकाल लागू करने की घोषणा की है। अर्दोआन ने कहा है कि आपातकाल लागू करने से विद्रोह के लिए जिम्मेदार लोगों पर जल्दी कार्रवाई की जा सकेगी। राष्ट्रपति अर्दोआन ने अमरीका में रहने वाले धार्मिक प्रचारक फतेहउल्ला गुलेन को तख्तापलट के लिए जिम्मेदार ठहराया है। गुलेन ने इस आरोप से इनकार किया है। तुर्की के राष्ट्रपति के प्रवक्ता इब्राहिम कैलिन ने कहा कि गुलेन के प्रत्यर्पण के लिए जल्द ही आधिकारिक अर्जी अमरीका को दी जाएगी। वहीं अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर गुलेन का प्रत्यर्पण नहीं हो सकता।
They have apparently submitted something that is accurate.
जॉन कैरी ने कहा कि तुर्की को आधिकारिक अर्जी देनी होगी, न्याय विभाग के तत्वावधान में ये अर्जी होगी और कानूनी मानदंड होंगे, उन्हीं के मुताबिक ये इस अर्जी को लिया जाएगा। पिछले 36 घंटों में मैंने तुर्की के विदेश मंत्री से बात की है, 4 बार बात की है। मैंने कहा है कि सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलेगा, हमें सबूत दिखाइए जिसके आधार पर हम कोई कदम उठा सकें। ये थे जॉन कैरी के शब्द, आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में चरमपंथ रोधी पुलिस ने युवाओं के नामों की एक सूची जारी की है जो पिछले कई महीनों से गायब हैं। पुलिस ने आम लोगों से ऐसे 261 लोगों के बारे में जानकारी देने को कहा है जो पिछले कुछ महीनों से लापता हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होली आर्टिसन बेकरी पर हमले के लिए जिम्मेदार चरमपंथियों के परिवार वालों ने इन लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। रिपोर्टों के मुताबिक इस सूची में डॉक्टरों, इंजीनियरों और रिटायर हो चुके या मौजूद सेना अधिकारियों के बेटे भी शामिल हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलेनिया ट्रंप का विवादित भाषण लिखने में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की एक कर्मचारी ने अपनी भूमिका स्वीकार की है। रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलेनिया ने एक भाषण दिया था जिसे लेकर उन पर अमरीका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा के भाषण की चोरी का आरोप लगा था। मैक्लेवर ने कहा कि ट्रंप दंपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा नमस्कार भारत में शामिल होने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है और जो रेडियो ट्यून इन कर रहे हैं स्वागत है उनका भी। दिल्ली स्टूडियो में जहां इस वक्त मैं बैठा हूं, वहां खिड़की के बाहर दिख रहा है आसमान में बादल पूरी तरह से छटे नहीं है। न जाने आपके यहां कैसा समय है, लेकिन कुछ बादल घिरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पार्टी के एक नेता जो सूबे की इकाई के उपाध्यक्ष भी थे, इत्तफाक से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है और उनके खिलाफ पुलिस केस भी दर्ज हो गया है। पूरी रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्रा।
मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का नतीजा बुरा हो सकता है, ये तो दयाशंकर सिंह के जहन में जरूर रहा होगा, लेकिन इतना बुरा हो जाएगा इसका शायद उन्हें अंदाजा नहीं था। पहले पार्टी ने उन्हें न सिर्फ राज्य इकाई के उपाध्यक्ष पद से हटाया बल्कि सभी संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की घोषणा की। बल्कि इसके कुछ ही देर बाद उन्हें पार्टी से भी 6 साल के लिए रुखसत कर दिया गया। हालांकि इन सबसे पहले दयाशंकर सिंह ने अपनी टिप्पणी पर पश्चाताप करते हुए माफी मांग ली थी। बलिया में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी।
मैं माफी मांगता हूं, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था। मैं बहन मायावती जी की बहुत इज्जत करता हूं, बहुत बड़ी नेता हैं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं।
लेकिन तब तक उन पर संसद से लेकर सड़क तक हमले हो चुके थे। दयाशंकर सिंह पर न सिर्फ उनकी पार्टी ने कार्रवाई की बल्कि बसपा भी काफी आक्रामक हो गई है। बुधवार को बसपा नेताओं की शिकायत पर लखनऊ में उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो आज बसपा नेताओं ने भाजपा दफ्तर का घेराव करने की ठान रखी है। बसपा नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कल ही कड़े शब्दों में इसके संकेत दे दिए थे।
उनके तथाकथित नेता दयाशंकर जी द्वारा जो हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया है और दलित विरोधी कार्य किया गया है, उसके विरोध में मेरे और अन्य साथियों के साथ में वो तहरीर दी गई। कल हमारा विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, अंबेडकर प्रतिमा जो हजरतगंज में है वहाँ पर विरोध प्रदर्शन है।
इससे पहले बुधवार को इस मामले में संसद में भी चर्चा हुई और सभी नेताओं ने एक स्वर से दयाशंकर सिंह की आलोचना की। BSP में कथित तौर पर पैसे लेकर टिकट बेचे जाने के संदर्भ में दयाशंकर सिंह ने मायावती की तुलना वेश्या से की थी, जिसे लेकर सियासी उबाल पैदा हो गया है। जानकारों का कहना है कि बसपा अब इस बहाने दलितों के प्रति भाजपा के रवैये को मुद्दा बना सकती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
क्या इस घटनाक्रम के बाद दलित वोट बैंक में सीध लगाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या मायावती की पार्टी इसका चुनावी लाभ उठाने की कोशिश करेगी और कामयाब होगी? समझने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने राजनीतिक मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से बात की।
मायावती के खिलाफ खाली ये कह देने से तो बात नहीं इतनी बिगड़ती अगर वो सिर्फ इतने तक कहते कि भाई वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते, जिस तरह अभी हाल में कुछ लोगों ने जो मायावती को इसका साथ छोड़ा है उनके पार्टी के लीडरान ने, तो उन्होंने भी आरोप लगाया था कि वो टिकट वहाँ बेचे जाते हैं उनके द्वारा ये वगैरह। लेकिन इन्होंने जिस तरह की अभद्रता अपने बयान में दिखलाई, जाहिर है कि हर एक को आपत्ति होने लाजमी है और मायावती के लिए तो ये बहुत बड़ा इशू बन गया है। क्योंकि मायावती इस वक्त बड़ी लो लाई कर रही थी, स्पेशली जब से उनके दो लीडर्स स्वामी प्रसाद मौर्य और RK चौधरी उनकी पार्टी को छोड़ गए थे। इस इंसिडेंट से मायावती को एक नई ऊर्जा मिल गई है और जिस तरीके से पार्लियामेंट में इशू को रेज किया और जिस तरह से उन्होंने सरेआम ये इस बात की भी धमकी दी कि वो इसको लेकर के सड़कों पे उतर आएंगे पार्टी के वर्कर्स, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग भी यही रहा है और आपको देखने में नजर आएगा अगले कुछ दिनों में जिस तरह से लखनऊ में एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है और जगह भी आई एम श्योर कि ये होगा इस तरीके का। और देखिए जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वाले जो इसमें बोल रहे हैं उनका भी नजरिया बड़ा सिंपल है, क्योंकि इस वक्त दलित वोट के लिए बड़ी होड़ लगी हुई है यूपी में, चाहे वो BJP हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, BSP का तो वोट बैंक ही वही है। आप देखेंगे कि जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के, उससे काफी हलचल हो गई है। इसमें वोट की भी राजनीति है, यही वजह है कि मजबूरन BJP को दयाशंकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ी। ये जो इस तरीके का एलिमेंट है दयाशंकर सिंह टाइप, इस तरीके का एलिमेंट हर पॉलिटिकल पार्टी में है और जो छुटभैये नेता होते हैं वो जनरली उनको इस तरीके की आदत होती है कि वो इस तरीके की बातें कह के अपने आप को लाइमलाइट में लाते हैं और पार्टी में उनको प्रोमिनेंस मिल जाती है। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें इस तरीके की जुबान भाषा शैली इस्तेमाल करके लोगों ने प्रोमिनेंस पाई है पार्टी में।
शरद जी, आपको लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम होने की वजह से बसपा को, मायावती को किसी तरह का फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का नुकसान हो सकता है?
बिल्कुल, ये काफी मुमकिन है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक्शन प्लान लग रहा था कि वो दलितों को वू करने में लगे हैं, उसको झटका लगेगा, क्योंकि मायावती अभी यहीं से खामोश नहीं होंगी, इसको बाकायदा वो इशू बनाए रखेंगी ताकि इसका जो भी उनको बार बार मायावती को इस बीच में काफी लग रहा था कि उनके वोट बैंक में, दलित वोट बैंक में हर पार्टी सेंध लगाना चाहती है और खासतौर से BJP, तो अब वो जो है मेरा ख्याल है कि वो शर्तियां इस बात को उजागर रखेंगी, इस इशू को अलाइव रखेंगी और उससे BJP को शर्तियां नुकसान होने की काफी उम्मीद है।
ये थे शरद प्रधान। आपको याद होगा दलित समुदाय के कुछ लोगों के साथ पिटाई के बाद गुजरात में इसका भारी विरोध हो रहा है। अभी वो मामला शांत हो पाता उसके बाद पहले ही शुरू हो गया है उत्तर प्रदेश में ये सब कुछ, जिसको दलित विरोधी के तौर पर पेश किया जा रहा है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख करते हैं कश्मीर का। भारत प्रशासित कश्मीर में बंद और कर्फ्यू का आज चौदहवां दिन है। इस महीने की 8 तारीख को हिजबुल मुजाहिदीन के कथित कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मौत के बाद घाटी में हालात अभी तक सामान्य नहीं हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में बीबीसी हिंदी आपको सुनवा रहा है कश्मीरी युवाओं की आवाज़ें और जानने की कोशिश कर रहा है कि उनके अनुभव क्या रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आज इस कड़ी में सुनिए भारत प्रशासित कश्मीर से एक दूसरी युवती की आवाज़।
हमने देखा मतलब इतने दिनों से यहाँ पे इतनी वायलेंस हो रही है, लोग मर रहे हैं, 40 से ज़्यादा लोग मर चुके, आज हो सकता है कि 50 भी मर जाए, 3000 से ज़्यादा जख्मी है। एंड हमारे पास पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो का कॉल आया, नवाज शरीफ ने मतलब अपनी हमदर्दी हमारे साथ दिखाई, लेकिन जब मोदी की बारी आई, मोदी फरमा रहे हैं कि यात्री ठीक है, यहाँ अमरनाथ यात्री, जब यात्रियों की इस बस का एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भुला दिया, देवर इन कर्फ्यू, लेकिन उनने वो सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा के वो लोग गए मतलब यात्रियों की हेल्प करने। यात्रियों को यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मतलब इंडियन मीडिया ऐसे दिखा रहा है कि हम लोग यात्रियों के दुश्मन हैं यहाँ पे, हम मतलब वो आएंगे तो उनके साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका भी कंसर्न है यात्रा, लग रहा है कि मतलब कश्मीर इज़ फॉर अमरनाथ यात्रा, कश्मीरियों के लिए तो है ही नहीं, एक डिस्कनेक्ट आ चुका है, मतलब लोग रिलेट नहीं कर पा रहे मोदी के साथ। राजनाथ सिंह मतलब ये बाकी पॉलिटिशियंस जो बोल रहे हैं वो ये नहीं बोल रहे कि कश्मीर में प्रॉब्लम क्या है, वो बोल रहे हैं कि कश्मीर की प्रॉब्लम पाकिस्तान से आ रही है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे जो मतलब अपनी फोर्सेज है वो वहाँ पे क्या कर रही है, हम लोगों से कैसे डिस्कनेक्ट करा रहे हैं उनको, हम एलिनेट कर रहे हैं, हम उनको ये दिखा रहे हैं तुम हमारा हिस्सा नहीं, हमें तुम्हारी ज़मीन से मतलब है, तुम लोगों से मतलब नहीं है। दे जस्ट नो कि कश्मीरियों ने 90s में गन उठाया ऑन पाकिस्तान बिहेस्ट, उनको नहीं पता है कि मतलब एवरी डे कितने लोग यहाँ पे गायब हो जाते, कितनी हाफ विडोज है हमारी, कितने ऑर्फन्स है, और आर्मी की वजह से कितने टॉर्चर की वजह से कितने लोग डिसेबल हो चुके, कितनों की लाइफ मतलब वो जहन्नुम बन चुकी है, दे कैन नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ।
सना फजीली दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं। जुबैर अहमद ने उनसे श्रीनगर में ये बातचीत की थी। जुबैर अहमद इस वक्त कश्मीर के दौरे पर हैं, जैसा कि आप जानते हैं वो श्रीनगर के अस्पतालों में गए और घायलों से मुलाकात की, उनके रिश्तेदारों से बातचीत की और जानने और समझने की कोशिश की उन लोगों के दुख और दर्द को। अस्पतालों में वो लोग इस वक्त भर्ती हैं जो सुरक्षा बलों के साथ झड़पों के दौरान घायल हुए थे। इनमें से अधिकतर लोगों के शरीर के ऊपरी हिस्से में पेलेट गन की चोट आई है।
मैं इस वक्त SMHS हॉस्पिटल के सामने हूं। श्रीनगर में दो बड़े सरकारी अस्पतालों में से ये एक है। 9 जुलाई को जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, हिंसा शुरू हुई, तो कई लोग घायल हुए, जख्मी हुए, उनमें से सैकड़ों लोगों को इसी अस्पताल में भर्ती किया गया था। कहा यह जा रहा है कि मीडिया वालों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वो उन्हें अंदर आने नहीं दे रहे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की अस्पताल के।
तो इस वक्त मैं उस सरकारी अस्पताल में हूँ जहाँ पर कई 100 मरीजों को लाया गया जो जख्मी हुए थे। कुछ मरीजों से अभी बात करेंगे। लोग बहुत हैं यहाँ पर, घायल जो हुए उनके परिवार वाले भी बहुत हैं। ये कहाँ है? हम ऑप्थल्मोलॉजी वार्ड। अच्छा, तो इस वक्त हम ऑप्थल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं इस अस्पताल के, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि कम से कम 50 मरीज अब भी हैं। कई के सरों पे, आँखों पे पट्टियाँ लगी हुई हैं और कई जो है वो चश्मे उन्होंने लगाए हुए हैं, और जेर इलाज यहाँ पर 9 तारीख से, तो इसमें एक छोटा बच्चा भी है।
ऐसा बच्चा हमारे सामने, ये अपने घर से निकल रहा था, ये तो कोई यहाँ बेड पे लेटा है, ये कोई पत्थरबाजी के लिए नहीं निकल रहा था, बल्कि इसने अपनी माँ को बताया था मुझे कि मार्केट से कुछ लेज लाने हैं, कुरकुरेज लाने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फोर्सेस हैं वो अपने बैरिक्स में वापस जा रहे थे। इस पे हज़ारों पैलेट्स लगाए गए और इसे जो ज़्यादा नुकसान हुआ वो इनकी आँखों को हुआ। इनके और डॉक्टरों का कहना है इनकी बिनाई वापस नहीं आ सकती। और दूसरी बात है, उनके पूरे बॉडी में शॉवर पैलेट्स किए गए, जो इस एक्सरे से आपको वाजिया हो जाएगा कि इसके स्टोमैक में पैलेट्स हुए, इसके हार्ट सैक में पैलेट्स हुए, और इसके पैरों में भी पैलेट्स है, हर जगह पैलेट्स पाए जाते हैं।
उस सर्जरी से पहले किस तरह का चोट था?
वो बहुत नाजुक चोट था।
आप बताइए। हाँ,
पूरा लाल था उसका।
आप इनकी माँ हैं?
हाँ।
मैं बच्चे की माँ हूँ।
अच्छा, तो ये बताइए कि डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया आज, जिस हालात पे वो लाए थे आप, वो किस तरह का था?
डॉक्टर ने बताया खतरा है, पट्टी खोलने के बाद बताएंगे।
और ये 9 तारीख को जख्मी हुआ था बच्चा?
हाँ।
तो बच्चा कहाँ पर था कि इसको चोट आ गई?
बाजार गए बिस्कुट लेने के लिए, पुलिस वालों ने हमला किया उसी पर।
तो आपको कब पता चला कि जख्मी हुआ?
मुझे लोगों ने बताया, लोगों ने उनको अस्पताल पहुँचाया।
आपके पड़ोसियों ने?
हाँ।
और यहाँ लेकर आए?
ना यहाँ नहीं, जंगलात मंडी।
अच्छा,
फिर हम दोनों ने लाए यहाँ।
कब लेकर आए?
कल शाम को।
तो ये पैलेट इंजरी है? हाँ। पैलेट से चोट लगी। और आपके साथ और भी बच्चे थे जिनको जख्मी हुए?
हाँ, एक
चार थे मगर दो ले गए उधर सोरा
में,
तो दो ले गए यहाँ।
अस्सलाम वालेकुम, आपको उस दिन जो चोट लगी आप बता दीजिए कहाँ कहाँ लगी आपको?
डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और उन्होंने बताया भी आपकी जो एक आंख है वो रिमूव है, उन्होंने बताया कि आपकी जो आंख है वो टोटली डैमेज है, निकालना पड़ेगा, उन्होंने निकाल दी मेरी आंख। अब एक आंख से है इंशाल्लाह, जो जिंदगी है इसी एक आंख से गुजारनी है।
इस आंख पे चोट कैसे लगी थी आपको?
इस आंख पे मुझे जो फोर्स है इंडियन आर्मी जो है CRPF, उन्होंने अटैक किया, ओपन फायर की मेरी आंख पे। मेरे अटैक से पहले वहाँ पे एक कैजुअल्टी हो गई थी, एक लड़के को मारा उन्होंने, तो फिर दूसरे दिन हम उसी के लिए प्रोटेस्ट करने लगे उस कैजुअल्टी के लिए। तो जो CRPF थी, पुलिस था, CRPF थे, वो हमारे घरों के अंदर आ गए, तो हमारे शीशे तोड़े, हमारे दरवाजे खिड़कियां पूरी तबाही मचाए, गाड़ियां गुड़ियां जो भी थी सब तोड़ दिए। तो उसी के लिए हम बाहर निकले, अपनी सेफ्टी के लिए बाहर निकले, अपने घरों को बचाने के लिए, तो उन्होंने ओपन फायर की जिसमें मेरी आँख चली गई।
तो ये था जख्मियों का अहवाल। हमने बहुत सारे उनके रिश्तेदारों से भी बातें की, सभी के अंदर गम गुस्सा है। वो ये कह रहे थे कि उनमें से अक्सर निहत्ते थे, कुछ ने कहा वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, कुछ ने कहा वो घरों के अंदर थे और जब बाहर निकले तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर गोलियां चला दी या पैलेट्स का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ। ज़ुबैर अहमद, BBC SMH हॉस्पिटल, श्रीनगर।
ये थे ज़ुबैर अहमद की रिपोर्ट श्रीनगर से। और अब देखते हैं कि भारतीय अखबार क्या कर रहे हैं, जो दिल्ली से छपने वाले अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबार हैं। हरीता मेरे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में।
जी फैसल साहब, सबसे पहले उन्हीं खबरों की बात जिनकी चर्चा कल दिन भर होती रही, गुजरात में दलितों का प्रदर्शन, उनकी पिटाई के बारे में जो मामला था वो, और उसके अलावा मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा नेता पर गाजगिरी, ये दोनों खबरें प्रमुख तौर पर छाई हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात में जो दलितों की पिटाई हुई है उस पर। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल का एक इंटरव्यू छापा है, इसमें उन्होंने भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य ही है बांटो और राज करो। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि भाजपा ने हमेशा हिंसा को बढ़ावा दिया है, 2002 के दंगे इसी का उदाहरण है।
हालांकि एक वक्त में ये भी कहा जा रहा था कि कहीं वो पूरा समुदाय उसको इन्वॉल्व किया गया था।
जी, तो ये जो है दलितों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने इसी खबर पर लिखा है कि दलितों के प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल जब मोटा समदियारा गांव गईं और वहां पर एक कमरे के मकान में रहने वाले बालू सरवैया ने उनसे कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए। बालू सरवैया, उनकी पत्नी और उनके दो बेटों की कथित तौर पर गोरक्षक दल के सदस्यों ने पिटाई की थी।
हां, ये तो एक वीडियो आया था, उस वीडियो की सच्चाई अब मालूम नहीं लेकिन कितना ऑथेंटिक था वो, लेकिन बहुत ही बुरी तरह से कुछ लोगों को पीटते हुए दिखाया गया था।
जी, तो इसके अलावा द हिंदू अखबार ने लिखा है कि गुजरात में दलितों की पिटाई के मामले की गूंज जो है संसद तक सुनाई दी और कल सारा दिन इस पर हंगामा होता रहा। इस पर कई हिंदी अखबारों ने राहुल गांधी की एक तस्वीर छापी है जिसमें वो अपने माथे पर अपना हाथ रखकर कुछ सोचने की मुद्रा में है या निद्रा की मुद्रा में है।
इस पर चर्चा हो रही
जी, इस पर चर्चा हो रही है। तो अमर उजाला, दैनिक जागरण, इन सब अखबारों में इस तस्वीर को मैं देख रही हूं।
टीवी चैनल पर तो बहस भी हो रही थी कि वो सो रहे हैं या ये वो ये सोच रहे हैं।
जी, इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 15 साल के एक दलित लड़के की कथित तौर पर मुंबई में पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। ये दलित लड़का किसी 15 साल की अपने ही जैसी एक और लड़की के साथ संबंध में था और कहा जा रहा है कि उसके परिवार वालों ने ही उसको पीटा था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है और 7 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। تو یہ خبریں ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان ٹائمز اخبار نے پورو کیندریہ وت منتری پی چدمبرم کا ایک انٹرویو ہے اس کے حوالے سے چھاپا ہے کہ انہوں نے بھارت پرشاست کشمیر کو زیادہ سوائتتا دینے کی وکالت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہی ایک حل ہے اس سمسیا کا.
حالانکہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ چاہے وہ کانگریس ہو یا بھارتی جنتا پارٹی, دونوں شاید ایک ہی طرح کی.
جی, اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کشمیر کے مدعے پر 1947 میں بھارت سے جڑنے کی شرطوں کو درکنار کیا اور اپنے وعدوں کو بھی توڑا, بھروسے کو توڑا, اور 40 سال سے ہم اس کی قیمت بھی چکا رہے ہیں. تو یہ پی چدمبرم کا کہنا تھا. اس کے علاوہ ایک خبر ٹائمز آف انڈیا میں چھپی ہے اور ہندوستان ٹائمز نے بھی اسے چھاپا ہے کہ ٹرانس جینڈروں کو جلدی ہی تیسرے جینڈر کے طور پر مانیتا مل سکتی ہے اور نوکریوں اور شکشا میں آرکشن کے فائدے بھی انہیں مل سکتے ہیں. ٹرانس جینڈر سمودائے کے لوگوں کے ادھیکاروں کی رکشا کے لیے ایک بل کو کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے.
بہت بہت شکریہ اخباروں کی سمیکشا کے لیے ہریتا.
سنسنی نہیں وشوسنیتا کا دم,
بی بی سی ہندی.
اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا, جہاں اس سال نومبر میں ہونے والے راشٹرپتی چناؤ کے لیے ریپبلکن پارٹی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا امیدوار چنا ہے. ٹرمپ کو امریکہ کے شہریوں کے ایک حصے کا سمرتھن ظاہر ہے حاصل ہے. ٹرمپ اپنے مسلمان ورودھی بیانوں کے لیے بھی چرچا میں رہے ہیں, اور آپ کو یاد دلا دیں کہ ان کی ایک ریلی سے ایک سکھ کو باہر کر دیا گیا تھا. ایسے میں اگر ٹرمپ کے ایک سکھ اور ایک مسلمان سمرتھک سے ملاقات ہو جائے جو ان کے لیے سپورٹ جنڈانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ جاننے کی ضرورت ہو جائے گی اور یہ جان پائیں گے ہم کہ کیا سوچتے ہیں مسلمان اور سکھ انہیں لے کر. بی بی سی سنواددات برجیش اپادھیائے کی ملاقات دو ایسے ہی لوگوں سے ہوئی.
ایک سال پہلے کسی کو امید نہیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس مقام تک پہنچیں گے, اور پوری دنیا میں وہ سرخیوں میں رہے ہیں اپنے وواداسپد بیانوں کو لے کر, کبھی مسلمانوں کے خلاف, کبھی امیگرنٹس کے خلاف. اور آج میرے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت دو خاص سمرتھک میرے ساتھ موجود ہیں. یہ ہے جسدیپ سنگھ صاحب, جن کا تعلق مولتہ بھارت سے ہے, اندور شہر میں پلے بڑے ہیں, اور یہاں دوسرے ہمارے ساتھ ساجد ترار صاحب ہیں جو مولتہ پاکستان سے ہیں. پہلے میں جسدیپ جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیسے ڈیسائیڈ کیا آپ نے کہ ٹرمپ کو سمرتھن دیں گے؟
سر, سب سے پہلے تو جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس نے ہم کو بہت اٹریکٹ کیا. جو ان کے خیال تھے, جو امریکہ جس دور سے پچھلے 8 سالوں سے گزر رہا ہے, اور جو وہ چینج کی ایک بات لے کے آئے تھے وہ, اور جو دوسری بات تھی جس میں ہم آئے کہ ہم نے دیکھا کہ جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, ہمارے انڈینز اور پاکستانی جو بھائی بہن ہیں, وہ سب لوگ ہلری کلنٹن یا برنی سینڈرز کو سپورٹ کر رہے تھے, اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جیتیں گے اور یہ آگے آئیں گے, اور اگر ہماری کمیونٹی ان کے ساتھ نہ ہوئی تو ہم لوگ کافی پیچھے رہ جائیں گے.
ساجد ترار صاحب, ٹرمپ نے جس طرح کے بیان دیے ہیں مسلمانوں کے خلاف, آپ نے کیسے من بنایا کہ آپ ٹرمپ کے ساتھ جائیں گے؟
اس وقت ایک تو کیلیفورنیا کا حادثہ ہوا تھا نیا نیا, اور اس کے بعد دوسری جو فیکٹ تھا, سیرین ریفیوجیز آ رہے تھے یہاں پہ, کوئی پتہ نہیں تھا کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں امریکہ میں آنے کے لیے. اور تیسری سب سے بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جب اپنی فارن پالیسی سپیچ دی, اس کا سبجیکٹ تھا امریکہ فرسٹ, اور ہم بھی وی آر امریکن فرسٹ ایٹ دی سیم ٹائم.
یہاں میں پچھلے چناؤ کے دوران کئی مسجدوں میں گیا, کئی ایسے علاقوں میں بہت سارے مسلمانوں سے میری ملاقات ہوئی ہے, وہ ایک طرح سے دہشت میں ہے. آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے اپنی برادری میں, آپ کیسے سمجھا پاتے ہیں ان کو کہ ہاں میں مسلمان ہونے کے باوجود ٹرمپ کے ساتھ ہوں؟
میں نے آرگنائزیشن شروع کی تھی 5 مہینے پہلے, تو اس میں تو شروع میں تو اٹ واز اپ ہل بیٹل, لیکن لیٹر آن جب میں نے ان کو کیس اپنی کمیونٹی کو بیان کرنا شروع کیا کہ ہم خود وکٹم ہیں ریڈیکل اسلام کے اور ٹیررزم کے. دیکھیں, آج تک آئسس, طالبان اور القاعدہ نے جتنے مسلمانوں کو مارا ہے انہوں نے کسی کو نہیں مارا. تو وہ جب میں اپنا کیس ان سے یہ بیان کرتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ سو ناؤ دے آر پیئنگ سم ٹینشن.
جسدیپ سنگھ جی, ٹرمپ کی ریلیوں میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک سکھ نوجوان وہاں کھڑے تھے, ان کو کافی ان کے خلاف آوازیں اٹھیں اور ایک طرح سے ان کو زبردستی سیکورٹی والے اٹھا کر باہر لے گئے. ایک سکھ ہونے کے ناطے یہ کتنی مشکل گھڑی تھی آپ کے لیے, یا پھر آپ کے لیے فیصلہ کرنا کتنا مشکل تھا؟ یہ
پوری طرح انوالو ہونے کا فیصلہ کیا وہ اس انسیڈنٹ کے بعد ہی کیا, کیونکہ میں بھی ٹرمپ صاحب کی بہت ریلیوں میں گیا ہوں, ان کے ساتھ کافی گیا ہوں, اور میں نے کبھی بھی ویسا کچھ نہیں دیکھا. اب جو ایک وہ انسیڈنٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, वो उन्होंने एक सेह को नहीं निकाला था, एक प्रोटेस्टर को निकाला था। अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे कोई यहाँ आके प्रोटेस्ट शुरू हो जाए, डिसरप्ट करे, तो हम भी उसे कहेंगे भाई यहाँ से जाओ और निकालेंगे। तो उसको लिबरल मीडिया ने एक ट्विस्ट दिया, एक प्रोटेस्टर को बाहर निकाला था, उसको एक कम्युनल न्यूज़ बना के कि एक सिख को बाहर निकाला है, और उसी को फिक्स करने के लिए एज अ सिख मैं ट्रंप साहब की हर रैली में गया, और जितना मुझे वहाँ पे वेलकम मिला, 20,000 लोग थे उस रैली में। मैं एज अ सिख फॉर अमेरिकन, सिख अमेरिकन फॉर ट्रंप गया हूँ, मेरे साथ साजिद साहब एज अ मुस्लिम अमेरिकन फॉर ट्रंप गए हैं, और लोगों ने हमें आके गले लगाया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर कमिंग। और मेरे ख्याल से ट्रंप साहब के बाद हमारे साथ उन्होंने इतनी फ़ोटोएँ खिंचाईं कि वी वर अमेज्ड कि इतना प्यार और इतनी सपोर्ट मिल रही है। तो ये जो न्यूज़ बाहर आ रही है काफ़ी ट्विस्टेड है, लिबरल मीडिया है और वो ट्विस्ट करके न्यूज़ दे।
पूरा यकीन है आपको कि वो जीत जाएंगे?
बिल्कुल पूरा यकीन है, ही इज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
हिलरी क्लिंटन, उनमें क्या खराबी आपको लगती है जिस वजह से आपको लगा कि नहीं मैं हिलरी के साथ नहीं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाऊंगा?
उनमें एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि वो ओबामा प्रेसिडेंसी की थर्ड टर्म होगी। People have rejected what President Obama has done for last 8 years. America की पूरे world में आज कोई respect नहीं है। वो Saudi Arabia गए, वहाँ का एक local mayor उन्हें receive करने आया है। Cuba गए, उन्हें कोई लेने ही नहीं आया। Iran को उन्होंने एक ऐसी deal दे दी है जो कि terrorism का गढ़ है, कि $150 billion उन्हें दे दिए हैं और कोई बिना किसी control के। So America has lost its luster. हम आज infrastructure में पीछे हैं। आप खुद देखते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट आज कहाँ के कहाँ चले गए। हमारा JFK और डलस एयरपोर्ट देखिए कहाँ चला गया। और ये उसमें नहीं होना, जब हिलरी क्लिंटन आएंगी उनकी सोशलिस्ट फिलॉसफी है और लिबरल फिलॉसफी है जो कि एक फेल्ड फिलॉसफी है। यूरोप में देखिए क्या हाल हो रहा है सोशलिज्म में। उनकी एक उपलब्धि है कि हमने फूड स्टैम्प्स जो हैं वो डबल कर दिए हैं। ये वो बड़ी प्राउडली बताते हैं कि हमने फूड स्टैम्प्स या जो लोग खैरात पे थे उनको हमने डबल कर दिया है, बजाय ये कहने के कि हमने उन लोगों को जॉबें दी हैं ताकि वो अपना खुद बना सकें, खुद कमा सकें। तो ये पॉलिसी से हम दूर जा रहे हैं, एंड वी नीड टू मेक अमेरिका द वे इट वॉज बिफोर। तो इसलिए हम डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
ये थे ब्रजेश उपाध्याय, और अब एक बार सुनते हैं खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चांदना। सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारतीय टीम आज से शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज का सामना एंटीगा में करेगी। टीम इंडिया की निगाहें वेस्ट इंडीज में सीरीज में जीत पर रहेगी। हेड कोच अनिल कुंबले के मार्गदर्शन में टीम इंडिया एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। ऐसे में कैसी होगी भारतीय टीम की दावेदारी, बताया वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन ने।
देखिए, अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें पेपर पे, तो इंडियन टीम ज्यादा मजबूत नजर आती है क्योंकि एक सेटल टीम है, अच्छा परफॉर्मेंस लाया पिछले 12 महीनों में, और वेस्ट इंडीज की टीम काफी बिखरी हुई नजर आ रही है। कोई ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है, केवल मार्लन सैमुअल और डायन ब्रावो दो खिलाड़ी हैं जो काफी अच्छे से खेलते आ रहे हैं, वरना सब न्यूकमर है।
वही भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच संजय बांगर का मानना है कि भारतीय टीम की तैयारी काफी अच्छी है।
हमारा काम सिर्फ अच्छी तरह से उनको प्रिपेयर करना है, अच्छे माइंडसेट में रखना है, और बाद में जिस तरह की इंटेंसिटी वो लोग लाते हैं प्रिपरेशन में, उनके ट्रेनिंग में, उनके मतलब जनरली ओवरऑल सारे पहलू हैं जो एक खिलाड़ी को बहुत जरूरी होते हैं, तो हर तरीके से वो बहुत एक प्रोफेशनल अप्रोच है उन लोगों का, और हमारा एक हम बहुत छोटा एक रोल निभाते हैं।
वहीं पहले टेस्ट मैच में हार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। ओल्ड ट्रैफर्ड में 22 से 26 जुलाई तक होने वाले इस टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम में प्रमुख तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की वापसी हुई है। इसके अलावा बेन स्टोक्स और आदिल रशीद को भी टीम में शामिल किया गया है। और पाकिस्तान के गेंदबाज यासिर शाह के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड ने भी अपनी टीम में लेग स्पिनर आदिल रशीद को जगह दी है। उधर टेनिस में भारत को डेविस कप टेनिस वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ मुकाबले में स्पेन से भिड़ना होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने ड्रॉ में इसकी घोषणा कर दी है। भारत ने एशिया ओशियाना ग्रुप एक दूसरे दौर के मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था, जबकि स्पेन ने यूरोप अफ्रीका क्षेत्रीय मुकाबले में रोमानिया को इसी अंतर से मात दी थी।
कार्यक्रम नमस्कार भारत अब खात्मे की तरफ है, लेकिन उससे पहले सुनेंगे विश्व समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष महा مایاوتی کے لیے اپشبد کہنے والے دیا شنکر سنگھ پر لکھنؤ میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوان نے پچھلے ہفتے ناکام تختہ پلٹ کے بعد دیش میں 3 مہینے کے لیے آپات کال لاگو کرنے کی گھوشنا کی ہے۔ بنگلہ دیش میں چرم پنتھ رودھی پولیس نے ایسے یوواؤں کے ناموں کی سوچی جاری کی ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے غائب ہے۔ پولیس نے عام لوگوں سے ایسے 261 لوگوں کے بارے میں جانکاری مانگی ہے جو لاپتہ ہیں۔ امریکہ میں راشٹرپتی پد کے لیے ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی پتنی میلانیا ٹرمپ کا وواعدت بھاشن لکھنے میں ٹرمپ آرگنائز ایشن کی ایک کرمچاری نے اپنی بھومیکا سویکار کی ہے۔ بی بی سی سماچار۔
کارکرم کا تکنیکی پکش سنبھالا تھا راجیش چوہان نے۔ 1 گھنٹے بعد پھر ملاقات ہوگی وشو بھارتی میں، تب تک کے لیے فیصل محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ نمسکار۔